ఓం శాంతి, ఓం శాంతి, ఓం శాంతి. మౌన్ కి సుందర్ అనుభూతి, తపస్యా కా సుందర్ అనుభవ, ఆర్ సాథ్ హి ప్యారే బాబా కే అంగ సంగ కా అనుభవ, యే హమారే జీవన్ కు ఆనంద సే ఔర్ రస్ సే భర్ దేతా హై. యహీ జీవన్ కా సచ్చా సుఖ హై. కహతే హై సైలెన్స్ ఇస్ గోల్డ్ అండ్ స్పీచ్ ఇస్ సిల్వర్. మౌన్ సోనే కే సమాన్ హై, జబ్కి బోల్ చాందీ కే సమాన్. తో సోనా చాహియే యా చాందీ? స్వర్ణ యుగ్ మే ఆనే కా లక్ష్య హై తో సోనే కే సమాన్ స్థితి. ఔర్ ఉస్ సోనే కే సమాన్ స్థితి కే లియే కహా గయా సైలెన్స్ ఇస్ గోల్డ్, క్యోంకి ఇస్మే ఖుద్ సే ఔర్ ఖుదా సే మిలన్ హోతా హై. తో బాబా కో సాదర్ నిమంత్రణ దియా కి బాబా సాదర్ పధారే ఇస్ మంచ్ పర్ బాబా ఆకర్ కే సబ్ సే మిలే హువే హై. జబ్ జ్ఞాన్ సరోవర్ కి శురువాత్ హో రహే థే తో బాబా ని ఇనాగ్రేట్ కియా జ్ఞాన్ సరోవర్ కా ఇస్ మంచ్ పర్ ఆకర్. తో ఫీల్ కరే జైసే బాబా కి ఉపస్థితి ఇస్ హాల్ మే ఇస్ మంచ్ పర్ హై. ఔర్ జబ్ భీ హాల్ మే ఆతే హై తో వహీ డీప్ ఫీలింగ్. ఆజ్ బాబా కే ఆహ్వాన్ కే సాథ్ హమ్ ఇస్ సీజన్ మే జో బాబా నే హమే సుందర్ హోమవర్క్ దియా హై. బాబా కి 11 మురళియాం చలీ ఇస్ సీజన్ మే తో పూరే హీ 11 మురళియోం కా ఎసెన్స్ 11 ధామో కే రూప్ మే లే రహే హై ఆజ్ కి ఇస్ క్రియేటివ్ యాక్టివిటీ మే. ఆప్ 4 ధామ్ తో జానతే హీ హై, హమారే 4 ధామ్, లేకిన్ ఆజ్ 11 ధామ్ జో మధుబన్ కే హై ఉన్కే సాథ్ బాబా కి హర్ మురళీ కి ఏక్ పాయింట్ లేకర్ హమ్ చల్ రహే తాకి యే హోమవర్క్ ఆప్ ఆప్కో హమేషా యాద్ రహే, ఇస్ వర్ష యాద్ రహే. ఔర్ హర్ బార్ రోజ్ కమ్ సే కమ్ ఏక్ బార్ 11 ధామో కి యాత్రా కర్కే ఆప్ ఇన్ 11 పాయింట్స్ కో రివైజ్ కర్ సకే. తో బాబా కో సామ్నే దేఖతే హువే ప్యార్ కే సాగర్ బాబా, జ్ఞాన్ కే సాగర్ బాబా, హమ్ సబ్ కా కితనా కళ్యాణ చాహతే హై, హమ్ సబ్ కే కితనీ ఉన్నతి చాహతే హై, హమ్ సబ్ కో జ్ఞాన్ యోగ్ సే శృంగార్ కర్ సంపన్న సంపూర్ణ బనానా చాహతే హై. ఐసే బాబా కో హమ్ రిటర్న్ యహీ దేం కి బాబా నే జో హమే కార్య దియా హై ఉస్ కార్య కో హమ్ కరే. కరేంగే నా? కౌన్ కౌన్ బాబా కే హోమవర్క్ కో కరేగా జరా హాత్ ఉఠాయే? హమ్ సభీ కరేంగే. ఏక్ అచ్చా స్టూడెంట్ వహీ హోతా హై జో అప్నే టీచర్ కే ద్వారా దియే గయే హోమవర్క్ కో కర్కే క్లాస్ మే ఆతా హై. తో బాబా నే జో ఇస్ సీజన్ మే హోమవర్క్ దియా ఉసే పూరా కర్కే హమ్ అగ్లే సీజన్ కి శురువాత్ బాబా కే సుందర్ ఆశీష్ కే సాథ్ కరేంగే. తో పహలీ జో బాబా కి మురళీ చలీ ఉస్మే బాబా నే శురువాత్ హీ బాబా హమ్ సబ్ కో సుందర్ నషే సే కరాతే హై నా. బాబా నే కహా ఇత్నా శ్రేష్ఠ భాగ్య, క్యా స్వప్న మే భీ సోచా థా కి బాప్ హమ్ పర్ బలిహార్ జాయేగా. సృష్టి కా మాలిక్ స్వయం భగవాన్ హమ్ పర్ బలిహార్ జాయేగా, క్యా యే స్వప్న మే భీ సోచా థా? బాబా పూచ్తే హై. భక్త భగవాన్ కే గీత గాతే ఔర్ భగవాన్ ఆప్ లకీ సితారో కే ఆప్ బచ్చో కే గీత గాతే హై సోచి. ఆతే హీ బాబా కితనా నషా, కితనీ ఊంచీ దృష్టి సే హమే దేఖతే హై కి భక్త జిసే యాద్ కర్తే హై స్వయం భగవాన్ తుమ్ బచ్చో కో యాద్ కర్తే హై తో కితనా శ్రేష్ఠ భాగ్య హై. ఔర్ బాబా నే ఇస్ మురళీ మే ఫిర్ హమే హోమవర్క్ దియా కిసీ భీ ప్రకార్ కా బోజ్ అగర్ మన్ మే హై తో బాప్ కో దే దో. బాప్ లేనే హీ ఆయే హై, దిల్ సే రియలైజ్ కరో కి బోజ్ క్యా ఔర్ డబల్ లైట్ క్యా. ఏక్ బోఝిల్ స్థితి క్యా హోతీ హై और डबल लाइट स्थिति क्या होती है, ये हम सबको अनुभव है। बाबा कहते इसे रियलाइज करो, बोझ को छोड़ो तो छोटे। बाबा लेने आए हैं, अब हमें क्या कहते हैं, छोड़ो तो छूटे। और छूटने का साधन है दृढ़ संकल्प। तो बोझ सबने बाबा को दे दिए हैं या अभी भी कुछ बोझ है? चलिए अपने अंदर, डायमंड हॉल हमारा पहला धाम है, डायमंड हॉल जहां बाबा आते हैं, पहुंच जाए बाबा के सम्मुख। अपनी डायरी में आप थोड़ा अंदर जाकर के लिखें, क्या मन में कोई बोझ है? अपने अंदर जाओ, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। कोई भी बोझ, क्या मुझे परेशान कर रहा है, भारी कर रहा है, उसे नोट कर लें। एक दो तीन, कौन सा बोझ? बाबा कहते मैं बोझ लेने आया हूं। अपने बोझ मुझे अर्पित कर दो। देखें बाबा की दृष्टि लेते हुए पहुंच जाए डायमंड हॉल में। बाबा मेरे सामने, मैं बाबा के सम्मुख, बाबा अपनी दृष्टि से मुझे निहाल करते हुए और ये कहते हुए, बच्चे लाओ अपना बोझ मुझे दे दो। दे दें अपना बोझ। और डबल लाइट हो जाए। जब बाप बोझ उठाने को तैयार है, आया ही है मेरे बोझ लेने, मैं क्यों बोझ हिल रहा हूं? बाबा को देकर बिल्कुल हल्का। चाहे परिवार का बोझ, व्यवसाय का बोझ, स्वभाव संस्कार का बोझ, पुराने पाप कर्म विकर्म का बोझ, जो भी बोझ है अर्पित। एक मिनट डीप साइलेंस, बाबा से दृष्टि लेते हुए दिल से अर्पित करें। डायमंड हॉल पहला धाम, अपने सारे बोझ बाबा को मैंने अर्पित कर दिए और बन गया डबल लाइट। चलें यहां से दूसरी धाम की ओर, दूसरी मुरली, दूसरी अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। संतुष्टता संगम पर विशेष बाप की देन है। संतुष्टता की स्थिति परिस्थिति पर सदा विजयी है। केवल संतुष्ट नहीं, सदा संतुष्ट होमवर्क है। केवल संतुष्ट नहीं, सदा संतुष्ट। तो अब चेक करेंगे अपनी डायरी में, अपने आप को परसेंटेज देंगे जो बाबा ने हमें होमवर्क दिया। स्व से मैं कितना संतुष्ट हूं, अपने आप से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी वर्तमान स्थिति से, मैं जो कर रहा हूं वर्तमान में उससे मैं स्व से कितना संतुष्ट हूं। अपने इस ब्राह्मण परिवार से, लौकिक परिवार से भी कितना संतुष्ट। चलो लौकिक परिवार से हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती यदि वो ज्ञान में नहीं है तो, लेकिन ब्राह्मण परिवार में रहते हुए ब्राह्मण परिवार से कितना संतुष्ट। ऐसा तो नहीं कि किसी का स्वभाव, किसी का संस्कार मुझे परेशान करता है कि ये ठीक नहीं है, ये नहीं होता तो अच्छा होता, ऐसी स्थिति नहीं होती तो अच्छा होता। व्यक्ति से, सिस्टम से असंतुष्ट। इसको अच्छा कमरा दे दिया, हमें अच्छा कमरा नहीं दिया। यहां भी ऊपर नीचे होता है। कमरे में जो आपके चार पांच साथी हैं, वो यदि खर्राटे कोई लेता हो, उस खर्राटे लेने वाले से असंतुष्ट कि ये हमारे कमरे में इसको क्यों दे दिया, हमारी नींद खराब हो रही है। कोई वॉशरूम में ज्यादा टाइम लगाता हो, उससे असंतुष्ट। ब्राह्मण परिवार से कितना संतुष्ट। ड्रामा जो चल रहा है, जो मेरे पास्ट में हो चुका, वर्तमान में चल रहा है, जो मेरे आसपास है, संगी साथी हैं, उससे मैं कितना संतुष्ट हूं, या ड्रामा के लिए भी कंप्लेन है। और बाबा से तो खैर संतुष्टता की बात ही नहीं, वो सब हैं ही हम, लेकिन कई बार बाबा को भी उलाहने देने लगते हैं कि बाबा आपने ऐसा क्यों किया। माता जी लंबे समय से ज्ञान में, कोरोना काल में पति उनके बीमार हुए, माता जी ने बाबा को बहुत कहा कि बाबा ये आत्मा रहनी चाहिए, लेकिन आत्मा चली गई, बाबा से असंतुष्ट। आपने मेरी सुनी नहीं, मैंने इतना आपके लिए किया, इतना यज्ञ में किया, तो बाबा से भी असंतुष्ट कई बार हो जाते। अपने आप को मार्क्स दे, इन चारों में मैं कितना संतुष्ट हूं। जितना संतुष्ट होंगे उतना ही संसार को दे पाएंगे। जो असंतुष्ट है वो संसार को दे नहीं सकता, आत्माओं को दे नहीं सकता, कल्याण नहीं कर सकता। वो अपनी ही इच्छाओं, कामनाओं में, अपने आप को ही तृप्त करने में लगा रहेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं सबसे बड़ी देन संगम की संतुष्टता। भगवान को पाकर, भगवान के खजानों को पाकर, इस श्रेष्ठ ज्ञान को पाकर के यदि आत्मा तृप्त नहीं हुए, अब तक लौकिक संसार से या आत्माओं से कामनाएं हैं, तो फिर कब संतुष्ट होंगे। मार्क्स दें अपने आप को, कितने प्रतिशत। स्व से कितने, परिवार से कितने, ड्रामा से कितने। हर एक डायरी पेन लेके जरूर आया करें क्लास में, क्योंकि हम लोग गॉडली स्टूडेंट हैं ना, नोट करें। अच्छी तरह चेक करें, और अपनी संतुष्टता को कहां तक ले चलना है हमें, चलें दूसरे धाम में। हमारा दूसरा धाम कौन सा स्थान है, ये प्रकाश स्तंभ। हमारी दादी संतुष्टता की देवी, संतुष्ट रहो, संतुष्ट करो, ये उनके जीवन का सुंदर मंत्र। तो पहुंच जाएं प्रकाश स्तंभ में और देखें दादी हमें संतुष्टता का सुंदर ताज पहना रही हैं, संतुष्ट मणि भव ये वरदान देते हुए। अपनी संतुष्टता को हमें 100% करना है, तृप्त हो जाना है। ईश्वरीय प्राप्तियों से ही आत्मा तृप्त होती है, इसीलिए ज्ञान योग जो अविनाशी खजाने हैं, मुझे उसकी ओर ही चलना है, बाबा को ही देखना है और किसी की ओर नहीं, तभी तृप्ति होगी। देखें दादी मुझे संतुष्टता का सुंदर ताज पहनाकर संतुष्ट मणि भाव का वरदान दे रही। पहन लिया सबने ताज, पहन लिया। किस किस के सिर पे ताज आ गया, किस किस के बहुत सुंदर। आज शाम को भी आपके सिर पर ताज आएगा, लेकिन उससे पहले संतुष्टता का ताज। चलें तीसरी मुरली की ओर। याद रखिएगा सुंदर, हमारी यात्रा चल रही है पूरी एकाग्रता से। तीसरी मुरली में बाबा ने हमें कहा, हरेक को तीव्र पुरुषार्थी बन, पुरुषार्थी नहीं तीव्र पुरुषार्थी बनना ही है। एक एक बच्चे को आज बाप दादा तीव्र पुरुषार्थी का टाइटल दे रहे हैं। अभी इस टाइटल को याद रखना, कोई पूछे आप कौन हैं तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, एक साथ बोलें। यदि कोई पूछे कि आप कौन हैं तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं, मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं। बाबा ने यह कहा, कोई कहे पूछे तो ये कहो मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं, अब पुरुषार्थी नहीं तीव्र पुरुषार्थी। और तीव्र पुरुषार्थ का भाव बाबा ने एक लाइन में कहा, यद्यपि यह लंबा विषय है, बाबा ने कहा इसके लिए मन को बिजी रखने का अपना टाइम टेबल बनाओ। यदि मन को बिजी रखेंगे, उसके लिए टाइम टेबल बनाएंगे, तब पुरुषार्थ में तीव्रता आएगी, अन्यथा मन भागता रहेगा यहां वहां। इसीलिए मन के लिए हम अपना एक टाइम टेबल जरूर बनाएं। मन का टाइम टेबल अर्थात कोई भी एक सुंदर स्वमान और अभ्यास आप सारे दिन के लिए ले सकते हैं कि आज के लिए मेरा ये स्वमान ये अभ्यास है, उसमें स्थिर। आज जैसे बाबा ने कहा कि बच्चे स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी, तो मैं स्वराज्य अधिकारी हूं और मुझे ही विश्व राज्य अधिकारी बनना है, सुंदर इसके अभ्यास सारे दिन के लिए मन बुद्धि की एक दिनचर्या हो गई। तो सारे दिन के लिए चाहे हम एक स्वमान ले लें, या हर घंटे के लिए कोई एक स्वमान या अभ्यास ले लें, या अलग अलग कर्मों के लिए भी हम कोई ना कोई सुंदर अभ्यास अपने लिए फिक्स कर सकते हैं। नहाना है तो कौन सा अभ्यास करें, खाना है तो कौन सा अभ्यास करें, हम चल रहे हैं तो कौन सा अभ्यास करें, यदि हम ड्राइव कर रहे हैं तो क्या अभ्यास करें, मन बुद्धि के लिए अपनी दिनचर्या। यह हमारे पुरुषार्थ को तीव्र करेगा, व्यर्थ से हमें मुक्त रखेगा। जैसे एक अभ्यास 3S की ड्रिल, यह हमारी मन बुद्धि के लिए हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल 3S, फर्स्ट इज सोल, सेकेंड इज सुप्रीम सोल एंड थर्ड इज सकाश। सारे दिन के लिए मेरी मन बुद्धि की एक दिनचर्या हो गई कि मुझे सारे दिन में बीच बीच में ये ड्रिल करनी है। एक कहा आत्मा, चलिए थोड़ी देर इसकी ड्रिल कर लें। एक सोल कॉन्शियस हो जाए, दो सुप्रीम सोल देखें परम धाम में बाबा को, अब विश्व ग्लोब के ऊपर स्थित होकर सारे विश्व को मैं सकाश दे रहा हूं। फिर से एक, फर्स्ट इज सोल, आत्मा हूं, सेकेंड इज सुप्रीम सोल, पहुंच जाए परम धाम में, Third is Sakash. ये हो गए हमारे मन बुद्धि की दिनचर्या। तो तीव्र पुरुषार्थ के लिए ऐसे अपने मन बुद्धि की हम दिनचर्या बना लें सारे दिन के अभ्यास के लिए। इससे पुरुषार्थ में क्या आएगी? तीव्रता। तो ये तीसरी मुरली हम क्या याद करें? अव्यक्त लोक में जैसे बलसार दादी जी हम सबको तीव्र पुरुषार्थी भाव का वरदान दे रहे हैं, अव्यक्त लोक कनेक्ट कर लें इसे। तीसरा धाम अव्यक्त लोक, और अव्यक्त लोक में बाबा का सुंदर महावाक्य हमें याद दिलाती हुई वरदान रूप में दादी गुलजार जी ये कहते हुए तीव्र पुरुषार्थी भाव, तीव्र पुरुषार्थी भाव, तीव्र पुरुषार्थी भाव। चले चौथे धाम की ओर। धाम कौन सा है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन चौथी मुरली में बाबा ने कहा अभी माया दो रूपों में आती है, एक व्यर्थ संकल्प और दूसरा मैंपन। जो मैंने किया वही राइट है, इससे मुक्त होने के लिए ही बाप दादा क्या करते हैं? रोज की मुरली सुनने और मनन करने के लिए होमवर्क देते हैं। होमवर्क में बिजी रहेंगे तो व्यर्थ आने की मार्जिन नहीं रहेगी। बाबा रोज की मुरली हमें सुनाते हैं, मनन करने के लिए कहते हैं, और वो हमारा होमवर्क है। यदि इस होमवर्क में हम बिजी रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प मैंपन से मुक्त रहेंगे। तो रोज की मुरली होमवर्क है। आज की मुरली से आपने अपने लिए क्या होमवर्क लिया? एक एक खड़े होके बताएंगे। स्वराज्य अधिकारी बनना है, ओके, और तीव्र पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली, सुबह की मुरली कह रहा, हां जी, माया जीत सो जगत जीत, और अनुभवी मूर्त बनना है जी। थोड़ा जोर से बोलिए, एक उनको बोलने दीजिए। हाँ, वेरी गुड। और हम अनेक बार विजयी हुए हैं, ओके। और जी पेपर टाइगर है माया, श्रीमत पर चलना है, और कर्म योगी बनना है। ये हमने अपने लिए होमवर्क लिया है आज? ये हम रिपीट कर रहे हैं केवल, या हमने होमवर्क लिया है? जो आपने आज के लिए होमवर्क लिया है वो रिवाइज करें जी। कर्म करते हुए योग का अनुभव, कर्म योगी हो बाबा ने कहा, एक रस स्थिति में। चलिए एक रस स्थिति में स्थित हो जाएं, फिर पहुंच जाएं शक्ति स्तंभ में, एक रस स्थिति में। तो रोज की मुरली से हमें होमवर्क अपने लिए लेना है। चौथा हमारा धाम, कौन सा धाम है ये? कौन सा धाम? शक्ति स्तंभ। मुरली की दीवानी हमारी दादी, जब भी मिलते हैं मुरली की चर्चा शुरू, बिना मुरली सुनाए नाश्ता नहीं किया करते थे, मुरली की तान में झूमते थे। बाबा ने 12 बार कहा, दादी 24 बार मुरली पढ़ने लगे थे। तो शक्ति स्तंभ मुरली, मैं कौन मेरा कौन तो उनका था ही, लेकिन मुरली, देखिए मुरली ने दादी को दादी बना दिया, सारी विश्व की दादी बना दिया। हम भी मुरली के ऐसे दीवाने बने, कम से कम एक बात होमवर्क के रूप में रोज लें, ताकि वो हमें सब व्यर्थ चिंताओं से परेशानियों से मुक्त रखे। और एक एक यदि शिक्षा को हम रोज की मुरली से लेते चलें, तो जीवन कितना श्रृंगारित हो जाएगा ना। मान लो 1 जनवरी से आप शुरू करते हैं एक एक मुरली की एक एक पॉइंट लेना, उससे अपना श्रृंगार करना, तो 31 दिसंबर तक, साल के अंत तक क्या हो जाएगा, 365 सुंदर बाबा की शिक्षाओं से आपका जीवन सज जाएगा, है ना सहज पुरुषार्थ। इसलिए क्या करेंगे, रोज की मुरली से एक पॉइंट, ना निकाला हो होमवर्क के लिए आज अपना तो उसको जरूर निकालिएगा। तो हमारा चौथा सुंदर धाम शक्ति स्तंभ। चलिए पांचवी मुरली की ओर। बाबा ने पांचवी मुरली में कहा, सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बन, हर संकल्प और समय को सफल करो। सेकंड में व्यर्थ को बिंदी, आजकल का समय व्यर्थ में बहुत, व्यक्तियों का, ब्राह्मणों का भी व्यर्थ चिंतन, पास्ट का चिंतन, लोगों का चिंतन, बहुत टाइम उसमें वेस्ट हो रहा है। देखिए बाबा ने इसीलिए कहा सेकंड में व्यर्थ को बिंदी, फुल स्टॉप, क्योंकि समय और संकल्प वेस्ट हो रहा है ना व्यर्थ के रूप में, समय भी वेस्ट हो रहा है, जो अमूल्य समय है। बाबा कहते हैं संगम का एक एक सेकेंड एक एक वर्ष के तुल्य है, एक एक सेकेंड में जन्मों की कमाई कर सकते हो, और एक एक संकल्प से विश्व का कल्याण कर सकते हो। हम अपने उस संकल्प और समय रूपी खजाने को कहां लगा रहे हैं। इसीलिए बाबा ने कहा सेकेंड में व्यर्थ को बिंदी। पांचवा धाम हमारा बाबा की कुटिया। चलिए पहुंच जाएं बाबा की कुटिया में, बैठेंगे बाबा की कुटिया में, और कोई भी व्यर्थ है, किसी के लिए भी व्यर्थ है, अपने लिए व्यर्थ है, अपने पास्ट को लेकर व्यर्थ है, सेकेंड में फुल स्टॉप। एक संकल्प कि अब कोई व्यर्थ नहीं, जब भी मन में कोई व्यर्थ उठे, पहुंच जाएंगे कुटिया में बाबा के सामने, और शक्तिशाली स्थिति में बैठ व्यर्थ को तुरंत फुल स्टॉप। व्यर्थ मुझे बहा कर ना ले जाए, मैं मालिक राजा, मुझ में कंट्रोलिंग पावर है, जहां चाहूं ब्रेक लगा दूं। स्टॉप कहा और स्टॉप हुआ। उसके आगे एक भी संकल्प नहीं, तो बाबा की कुटिया में व्यर्थ को फुल स्टॉप, अपने संकल्प और समय को पूरी तरह सफल करना, पांचवी मुरली का होमवर्क। चलिए छठवी मुरली की ओर। बाबा ने छठवी मुरली में कहा कई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ करते, सिर्फ सोचते हैं बिंदु सामने आ जाए, बिंदु बिंदु बिंदु, और बिंदु खिसक जाते हैं। बिंदु तो है लेकिन कौन सी बिंदु, मैं कौन हूं, यह अपनी स्वमान स्मृति में लाओ। बाबा ने इस मुरली में कहा अपनी स्वमान को, केवल बिंदु नहीं, बिंदु खिसक ही जाती है, इसीलिए अपने स्वमान को स्मृति में लाओ, तो रमणीक पुरुषार्थ हो जाएगा कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, है ना। तो मैं कौन हूं, इस स्मृति को, इस स्वमान को अपने पास हमें नोट करना। अब चलें एक एक्टिविटी कर लें, जैसे बाबा देखें ये छठवां धाम बाबा जैसे हमें याद दिला रहे हैं कि बच्चे तुम हो तो बिंदु, बाबा का कमरा है ना ये हमारा छठवां धाम, बाबा का कमरा, बाबा अपने कमरे में बैठकर मुझे याद दिला रहे हैं कि बच्चे तुम कौन हो। कौन कौन बैठा है बाबा के सामने यहां? हम सब बैठे हुए हैं ना? तो बैठ जाएं बाबा के सामने, देखें बाबा याद दिला रहे हैं कि तुम कौन हो। कौन हो, क्या याद दिला रहे हैं बाबा? उसे अपनी डायरी में लिखेंगे कम से कम 5 स्वमान, हर एक अपनी डायरी में लिखे। देखें बाबा के कमरे में बैठकर बाबा को देखते हुए बाबा मुझे क्या स्वमान दे रहे हैं कि बच्चे तुम कौन हो, तुम कौन हो, लिखें अपनी डायरी में। कम से कम 5 स्वमान, ये व्यक्तिगत बाबा ने मुझे सुंदर स्वमान की माला पहनाई है कि बच्चे तुम ये हो, तुम ये हो, तुम साधारण नहीं, तुम विशेष। अपने इन्हीं स्वमानों की सुंदर स्मृति में हमें रहना है तो पुरुषार्थ रमणीक हो जाएगा। तो मैं कौन, अपने इन स्वमानों को हम याद करेंगे। लिखा सभी ने? लिखा सभी ने? बात सुंदर। तो हमें इन स्वमानों की श्रेष्ठ स्मृति में रहते हुए एक दूसरे को भी सुंदर स्वमान की माला पहनानी है। पहनाएंगे एक दूसरे को माला? चलें थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, एक एक पेयर बन जाएं। अब जो स्वमान आपने लिखा, बाबा ने जो आपको स्वमान की सुंदर माला पहनाई, सामने वाले को भी सुंदर स्वमान स्मृति में दिलाएं कि आप कौन हैं, याद करो, याद दिलाएं सामने वाले अपने आत्मा भाई को, साथी को, याद दिलाएं एक दूसरे को बोल के कि आप कौन हैं, क्या आप जानते हैं आप कौन हैं, आप कितने विशेष हैं, कितने महान हैं। पहनाइए पहनाइए माला, छोटी माला नहीं, बड़ी माला पहनाइए एक दूसरे को। हाँ, याद दिलाओ कौन है आप, जैसे बाबा हमें याद दिला रहे थे, बाबा ने हमें स्वमान दिया, आप सामने वाले को स्वमान याद दिलाएं। बहुत अच्छा, अब एक दूसरे को प्यार से शुक्रिया करके अपने स्थान पर बैठेंगे प्यार से। बहुत सुंदर। तो हमारा छठवां धाम बाबा का कमरा, जहां बाबा ने हमें सुंदर स्वमान स्मृति में दिलाई कि बच्चे तुम कौन हो। चलें अब अपने सातवीं मुरली की ओर। बाबा ने सेवेंथ अव्यक्त मुरली में कहा, जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि में अपनी चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाई, ऐसे रोज अपनी स्वराज्य दरबार लगाओ। जितने अभी स्वराज्य अधिकारी उतने भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी, और वर्तमान स्वराज्य के आधार पर जो आज भी बाबा ने मुरली में कहा, वर्तमान में कितने स्वराज्य अधिकारी हैं उसके आधार पर अभी भी तुम चेक कर सकते हो कि भविष्य में कितने राज्य अधिकारी बनेंगे। और यदि अभी राजा नहीं बने, अभी अपने कर्मेंद्रियों के गुलाम रहे, और सतयुग में यदि उन्हें राजा बना दिया गया तो बाबा ने कहा स्वर्ग भी नरक हो जाएगा, इसीलिए स्वराज्य अधिकारी। चलें पहुंच जाएं हिस्ट्री हॉल में, हमारा सातवां धाम हिस्ट्री हॉल, जहां बाबा रात्रि में दरबार लगाया करते थे। आप भी हिस्ट्री हॉल में पहुंचकर अपनी कर्मेंद्रियों का स्वयं दरबार लगाएं, देखें आत्मा राजा भृकुटी तख्त पर विराजमान, और सभी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियां मेरे सामने, चेक करें मन कितना मेरे नियंत्रण में है। मैं मन को चलाता हूं या मन मुझे चलाता है? संस्कार मुझ पर हावी तो नहीं हो जाते, पुराने संस्कार? मैं मालिक हूं, जो संस्कार यूज करना चाहूं करूं। कहीं कोई स्थूल कर्मेंद्रिय, आंख कान मुख धोखा तो नहीं दे देते? किसी की सुंदरता के पीछे भाग जाते, कनरस में कान लग जाते, अच्छा भोजन देखा, जीभ ने ज्यादा खाने की इच्छा व्यक्त कर दी। कितना मालिक हूं, देखें अपने दरबार में अपनी कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों को। और पक्का कर लें, मैं स्वराज्य अधिकारी राजा हूं। मेरी सभी कर्मेंद्रियां मेरे अनुसार चलेंगे, मेरे आदेश पर, श्रीमत अनुसार। राजा बनकर सिंहासन पर बैठेंगे, आदेश देंगे, तभी कर्मेंद्रियां अनुशासित होंगे। इसलिए राजा बनकर बैठे, चले आठवीं बाबा की मुरली। बाबा ने कहा दुख बहुत बढ़ता जा रहा है, आप आवाज नहीं सुनते हो, बाप दादा सुनता है, बिल्कुल हिम्मतहीन, दिल शिकस्त हो गए हैं आप। लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति द्वारा विश्व में अपनी लाइट माइट फैलाओ, ये बाबा ने हमें होमवर्क दिया। अपनी लाइट माइट हाउस स्थिति द्वारा सारे विश्व में लाइट माइट फैलाओ, एक स्थान पर बैठे चारों ओर वरदाता विधाता बन सर्व आत्माओं को नजर से निहाल करो, नजर से निहाल करो। तो बाबा ने कहा विश्व में आत्माएं हाहाकार कर रही हैं, त्राही त्राही कर रही हैं, तुम्हें क्या करना है? लाइट माइट हाउस बनकर लाइट माइट देनी है, विधाता वरदाता बनकर आत्माओं को नजर से निहाल करना है। तो लाइट माइट देंगे ना सभी को, हम अपने इस आठवें धाम में स्थित हो जाएं, जैसे शांति स्तंभ से चारे विश्व में लाइट माइट फैलती है, शांति के प्रकंपन फैलते हैं, हम भी शांति के स्तंभ, लाइट के स्तंभ, माइट के स्तंभ बनकर सारे विश्व को लाइट माइट देंगे। खड़े हो जाएं अपने स्थानों पर। हम सब बाबा के सुंदर महावाक्य के अनुसार सारे विश्व में लाइट और माइट फैलाएंगे, जो बाबा ने कहा कि बच्चे आप लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में स्थित हो जाओ। देखिए मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूं, मुझसे चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैल रही है। जैसे शांति स्तंभ टावर ऑफ पीस हूं मैं। जाने दें इस दिशा में दूर दूर तक सब आत्माओं तक शांति की किरणें। अब अपने राइट हैंड साइड में टर्न हो जाएं, इस दिशा में स्थित हो जाएं। सुंदर स्थिति में मैं माइट हाउस, टावर ऑफ माइट, देखें मेरी भ्रिकुटी से शरीर जैसे एक स्तंभ है और भ्रिकुटी पर चमकती हुई मणि, उससे माइट अर्थात शक्तियां निकलकर इस दिशा में दूर दूर तक जा रही हैं, आत्माओं को शक्ति मिल रही है। निर्बल आत्माएं बलवान हो रही हैं, शक्तिशाली हो रही है। फिर राइट साइड में टर्न हो जाएं और स्थित हो जाएं अपने वरदाता विधाता स्वरूप में। मैं वरदाता हूं, देखें इस दिशा में जितनी आत्माएं हैं, भक्त आत्माएं, आप वरदानी आत्मा से वरदान की कामना कर रही हैं। अपना वरदानी हाथ उठाकर उन्हें वरदान देंगे। जाने दें अपने वरदानों के सुंदर प्रकंपन सब भक्त आत्माओं तक, कि सबका भला हो, कल्याण हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। फिर से राइट हैंड साइड में टर्न हो, हाथ नीचे। अब इस दिशा में जितने भी प्रकृति के तत्व हैं, पांचों तत्व स्थित हो जाएं अपने पवित्र स्वरूप में और इस दिशा में पवित्र प्रकंपन फैलाएं। जैसे मुझसे पवित्रता के वाइब्रेशन इस दिशा में दूर दूर तक प्रकृति के पांचों तत्वों को प्राप्त हो रहे हैं, प्रकृति पावन हो रही है, निर्मल हो रही है। मैं मास्टर पवित्रता का सागर, मास्टर पवित्रता का सूर्य, जैसे सूर्य की किरणें चारों दिशाओं में फैलती हैं, मेरे भी पवित्रता का प्रकाश इस दिशा में दूर दूर तक प्रकृति के पांचों तत्वों को पावन कर रहा है। फिर से राइट हैंड साइड में टर्न हो जाएं और संकल्प ये लेते हुए कि हमें सारे विश्व में ऐसे ही लाइट माइट अपनी शांति शक्ति पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलाना है, जैसे बाबा निरंतर फैलाते हैं। बैठे चलें नौवीं मुरली की ओर। बाबा ने नौवीं मुरली में कहा, आपका व्रत है सारे जीवन संपूर्ण पवित्र रहने का व्रत। बाप दादा कहते हैं, क्या आपस में भ्रिकुटी में आत्मा को देख बात नहीं कर सकते? अब अपनी वृत्ति ऐसी बनाओ जो विकारी पतित का भी आपके वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन हो जाए। तो आपस में भ्रिकुटी में आत्मा देख बात करना, आत्मिक दृष्टि। बाबा ने खास अंडरलाइन कराया, क्योंकि जैसे ही देह पे दृष्टि जाती है हमारा योग टूटता है, देह पे दृष्टि जाती है व्यर्थ चलता है, आकर्षण पैदा होता है। इसीलिए बाबा ने कहा, आपस में भ्रिकुटी में आत्मा को देख बात करो। जैसे बाबा की भ्रिकुटी में हमेशा महाज्योति दिखाई देते हैं ना, राइट? चाहे ब्रह्मा बाबा थे या दादी, मस्तक पर हमेशा महाज्योति चमकते हुए। तो हमारा नौवां धाम ओम शांति भवन, जहां बाबा हमें ये प्रेरणा देते हुए, बच्चे आत्मिक दृष्टि, आत्मा भाई भाई की दृष्टि का सुंदर अभ्यास करो। चले एक मिनट बैठे बैठे ही अपने बगल बगल वाले के साथ पेयर बना लेंगे और आत्मिक दृष्टि का सुंदर अभ्यास करेंगे। भ्रिकुटी तख्त पर मैं अपने आत्मा भाई को देखता हुआ, भ्रिकुटी सिंहासन पर मैं भी आत्मा, और मेरे सामने मेरा आत्मा भाई। बिल्कुल भ्रिकुटी पर चमकती हुई मणि दिखाई दे, बाबा का होमवर्क है मेरे लिए कि क्या भ्रिकुटी पर आत्मा देखकर बात नहीं कर सकते, जैसे बाबा तुम्हें आत्मा देखकर बात करता है, आत्मा भी देखता है, वैसे तुम भी आत्मा देखो। ओम शांति। तो ओम शांति भवन नौवा धाम, बाबा हमें प्रेरित करते हुए ये बच्चे भ्रिकुटी पर आत्मा देख करके ही बात करनी, व्यवहार करना। दसवीं मुरली बाबा की। बाबा ने कहा, सिर्फ तीन बातों का स्व में संकल्प मात्र भी ना हो यह परिवर्तन करो। कौन सी तीन बात? एक परचिंतन, दूसरा परदर्शन और तीसरा परमत। परमत कहो, परसंग कहो या कुसंग कहो, तो ये तीन बातें अंदर ना हो, पर चिंतन, पर दर्शन और परमत। इसकी जगह स्वचिंतन, स्वदर्शन और श्रीमत। इसे हम अपने दसवें धाम ज्ञान सरोवर, कौन सा हॉल है ये जहां आप सब बैठे हुए हैं, तो जब भी इस हॉल को याद करें दसवें धाम के रूप में, याद करेंगे पर चिंतन, पर दर्शन और परमत से मुक्त। प्रतिज्ञा करेंगे इस बात की यहां। चलें फिर से एक बार खड़े हो जाएं, आपकी आत्मा की एक्सरसाइज के साथ शरीर की भी एक्सरसाइज। हम सब बाबा को सम्मुख देखते हुए, जैसे कहा कि बाबा इस हॉल में 1995 में, इसी हॉल में, इसी मंच पर, जैसे बाबा सामने और हम सब, प्रतिज्ञा करेंगे प्रतिज्ञा अपना दाहिना हाथ आगे करके, ऐसे करके नहीं, ऐसे करके, हाँ, दिल से प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा क्या? अंतर मन से बोल कर नहीं कि बाबा आज से मैं पर दर्शन, पर चिंतन और पर मत से मुक्त रहूंगा, मुक्त रहूंगी। और इसके स्थान पर स्वदर्शन, स्वचिंतन और श्रीमत पर ही चलूंगा, चलूंगी। बाबा को सामने देखते हुए प्रतिज्ञा करेंगे। हाथ नीचे कर लें, देखें बाबा हमारी प्रतिज्ञा से कितने प्रसन्न हैं और हमें दिल से वरदान दे रहे हैं। बच्चे अपने इस प्रतिज्ञा में विजयी भाव, विजयी भाव, विजयी भाव। बाबा के इस वरदान को आत्मसात करते हुए बैठेंगे अपने स्थान पर और इस प्रतिज्ञा को नोट करके रखेंगे अपने पास। हमने बाबा से ये सुंदर प्रतिज्ञा की है, एक दूसरे को याद भी दिलाएंगे। जब कभी कोई पर दर्शन करना शुरू करे, पर चिंतन करना शुरू करे, हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है। इस हॉल को याद कर लेंगे दसवें धाम के रूप में। और अंतिम बाबा की मुरली, ग्यारहवीं मुरली, बाबा ने कहा पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ और पॉइंट बन जाओ। पॉइंट शब्द को बाबा ने याद दिला, एक शब्द याद रखे, पॉइंट याद रखो। बाबा की जो भी इतनी सारी पॉइंट्स होते हैं उनमें से कोई पॉइंट, बहुत सारी पॉइंट्स भी हो सकते हैं, पॉइंट को याद रखो और बातों को याद मत रखो। हम करते ये हैं, दूसरी बातों को याद रखते हैं और बाबा की पॉइंट भूल जाते हैं। तो पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, जो हो गया पॉइंट लगाओ। पॉइंट नहीं लगाते तो अपने वर्तमान को भी नष्ट करते रहते हैं। पॉइंट लगाओ और पॉइंट बन जाओ। जब यह अभ्यास बार बार का होगा तभी आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट्स ले सकेंगे, पास विद ऑनर बन सकेंगे। कौन कौन पास विद ऑनर होना चाहता है? पास विद ऑनर, पास विद ऑनर, वेरी गुड, बहुत सुंदर। हम सबका लक्ष्य है पास विद ऑनर। तो बाबा ने इसके लिए पॉइंट शब्द की स्मृति दिलाई, पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ और साथ ही पॉइंट बन जाओ। तो चलिए पॉइंट लगाएंगे, बिल्कुल अपनी सुंदर बातों में पॉइंट, बाबा की सुंदर जो बाबा ने हमें कही हुई है उन्हें याद रखते हुए, जो भी पास्ट हुआ उसे पॉइंट और आत्मा पॉइंट बनकर बैठ जाए। कहाँ? हमारा ग्यारहवां धाम है बाबा का सेंटर, सेंटर जहां हमें रोज बाबा की पॉइंट्स मिलती हैं। रोज कौन कौन सेंटर जाता है आप में से? अच्छा, ज्यादातर जाते हैं। संकल्प लेंगे रोज बाबा के सेंटर पर हमें जाना है, तभी तो हम पॉइंट याद रख पाएंगे ना, क्योंकि वहीं हमें पॉइंट्स मिलते हैं, वहीं हमें पॉइंट बनने की प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है और वहीं हम पॉइंट लगाने का भी अपने अंदर एक सुंदर संकल्प ले सकते हैं। तो बाबा का सेंटर, पॉइंट की सुंदर स्मृति, ठीक है? तो चलें एक बार फिर से रिवाइज कर लें ग्यारह धामों को। क्या क्या था? पहला डायमंड हॉल। डायमंड हॉल में क्या करेंगे? क्या किया हमने? बोझ अर्पित किया। कोई भी अब बोझ आएगा, कभी भी मन में बोझ लगेगा, हम कहां पहुंच जाएं? डायमंड हॉल, बाबा के सम्मुख अपने बोझ को अर्पित किया और डबल लाइट बन गए। दूसरा धाम प्रकाश स्तंभ। दादी ने क्या हमें दिखाया? पहनाया ताज, संतुष्ट मणि का। हम बन गए संतुष्ट मणि, किसी से भी असंतोष नहीं, ना स्व से, ना परिवार से, ना ड्रामा से, ना बाबा से, संतुष्ट मणि। तो प्रकाश स्तंभ में संतुष्ट मणि का ताज, दादी प्रकाश मणि जी से पहनेंगे। तीसरा हमारा धाम अव्यक्त लोक, क्या लिया वहां हमने? तीव्र पुरुषार्थी भाव का वरदान लिया, साधारण पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ। और तीव्र पुरुषार्थ के लिए मन बुद्धि की दिनचर्या, अपने लिए मन के लिए होमवर्क जरूर लेना है, फिक्स करना है। चौथा धाम शक्ति स्तंभ, शक्ति स्तंभ में मुरली, रोज की मुरली जो बाबा सुनाते हैं उसको, उसमें से एक पॉइंट मनन के लिए होमवर्क के रूप में जरूर लेना है। तो दादी जैसे मुरली की दीवानी, हम भी मुरली के दीवाने बनके बहुत अच्छी तरह से मुरली को होमवर्क के रूप में लेंगे और उसका मनन चिंतन करेंगे। पांचवा, बाबा की कुटिया क्या करेंगे? व्यर्थ को स्टॉप, जब भी व्यर्थ है कुटिया में पहुंचे, व्यर्थ को फुल स्टॉप, बाबा को व्यर्थ अर्पित और फुल स्टॉप। देखें कि स्टॉप लगता है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना स्टॉप लगाना सहज होगा। छठवां, कमरा, कमरे में बाबा ने क्या दिया? स्वमान, सुंदर स्वमान याद दिलाया, बच्चे तुम कौन हो, कौन हो, हा? तो स्वमान की सुंदर स्मृति बाबा के कमरे में। सातवां, हिस्ट्री हॉल, क्या करना है? हिस्ट्री में स्वराज्य दरबार, अपना दरबार लगाना है, अपनी कर्मेंद्रियों का दरबार, जैसे बाबा वहां हिस्ट्री हॉल में दरबार लगवाया करते थे, हम भी अपना स्वराज्य दरबार लगाएं, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी ही बाबा ने कहा विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। उसके बाद शांति स्तंभ में क्या करेंगे? लाइट माइट हाउस बनकर लाइट माइट की किरणें फैलाएंगे, जैसे बाबा वहां हम सबको प्रेरित करते हैं कि तुम सभी को लाइट दो, माइट दो, प्यूरिटी और नॉलेज, इन सब के टावर है ना, हम भी टावर बनकर के एक स्थान पर जहां पे भी हैं वहां से अपनी लाइट माइट सभी को प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आठवां धाम। नौवां धाम ओम शांति भवन, बाबा ने क्या स्मृति दिलाई? आत्मिक दृष्टि, आत्मा देखकर व्यवहार करो, आत्मा देखकर बात करो। दसवां धाम ज्ञान सरोवर, क्या क्या किया आपने बाबा के सामने? क्या किया? प्रतिज्ञा की, किस चीज की? परदर्शन, परचिंतन और परमत, इससे हम मुक्त रहेंगे, स्वचिंतन करेंगे, स्वदर्शन करेंगे और हमेशा श्रीमत पर ही चलें। तो प्रतिज्ञा याद रहेगी ना, प्रतिज्ञा के लिए आज बाबा ने क्या कहा? प्राण जाए पर वचन न जाए, तो वचन निभाएंगे ना, निभाएंगे ना। हॉल के बाहर माया सुन रही है, निकलते ही कहीं दूसरों का दर्शन शुरू ना हो जाए, दूसरों का चिंतन शुरू ना हो जाए, पक्के है? ठीक है। और ग्यारहवां धाम बाबा का सेंटर, क्या याद करेंगे? पॉइंट, पॉइंट्स हमें मिलती हैं बाबा के सेंटर से, तो हमें पॉइंट याद रखना है, पॉइंट लगाना है और पॉइंट बन जाना है। ठीक है, तो सुंदर ग्यारह धामों की रोज एक बार यात्रा कर लेना, तो आपको पूरी ही सीजन की होमवर्क जो बाबा ने दिया हुआ है वो याद आ जाएगा और हम सब बन जाएंगे बाबा के समान। चलें तो अब यात्रा करते हुए पुनः इन ग्यारह धामों की। हाँ जी 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 जरूर। तो चलें हम यात्रा करेंगे मन से बाबा की याद के साथ और पक्का कर लेंगे इन सुंदर बातों को।